आप सबको नमस्ते। हम जो डिस्कस कर रहे थे हमारे धर्मों के क्या क्या ग्रंथ हैं, क्या लिट क्या स्क्रिप्चर्स हैं। पहली चीज है कि हर वो व्यक्ति जो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हुआ है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके धर्म का क्या क्या धर्म ग्रंथ हैं। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसीलिए हमने एक सीरीज चलाई। पहले हमने डिस्कशन किया जो हिंदू धर्म का सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं वेद, फिर जो बाकी वैदिक लिटरेचर ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, उसके बाद जो वेदांग छे शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष छंद आदि, फिर उपवेद तो धनुर्वेद आयुर्वेद स्थापत्य वेद आदि। आज जो लिटरेचर जो हमारे धर्म से रिलेटेड एक लिटरेचर की डिस्कशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत इंटरेस्टिंग लिटरेचर है, और वो है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है ऐसे शास्त्र जो वेद और उपनिषदों के विचारों को एक लॉजिकल एनालाइज करते हैं विथ ए प्रॉपर रीजनिंग, जिसमें लॉजिक रीजनिंग और बहुत सारे जो लॉजिकल एस्पेक्ट है उसके द्वारा वेद और उपनिषदों के ज्ञानों को एलाबोरेट करते हैं, एक तरह के उसको एक इंटेलेक्चुअल शेप देते हैं। ऐसे ग्रंथों को हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो मूलतः बेसिकली छह अलग अलग दर्शन शास्त्र हैं जो ज्ञान के अलग अलग जो विधाएं हैं, जो अलग अलग डायमेंशन है उससे वो मेनली उससे डील करते हैं। सब दर्शन शास्त्र कुछ चीजों पर कॉमनली बात करते हैं, पर सबका अपना अपना फोकस सब्जेक्ट है जिस पर वो डिस्कशन करते रहते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? वैसे अंग्रेजी में आप फिलॉसफी बोल देते हैं, पर फिलॉसफी जो शब्द है वो दर्शन शास्त्र के पूरे भाव को नहीं रिप्रेजेंट करता है। दर्शन का सिंपल मीनिंग है विजन। बताए ना, जो लीडर्स होते हैं, आप अपने एक फैमिली के लीडर हैं या देश के लीडर हैं या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं। तो आपके पास एक विजन होता है, कुछ थॉट होते हैं, उस विजन को दर्शन कहते हैं। यहां दर्शन का अर्थ है ज्ञान है, और ज्ञान दो तरह से होता है। या तो आप अपने इंद्रियों को यूज करके अपने बुद्धि के द्वारा उसको एनालाइज करके जो ज्ञान पाते हैं वो एक एक लेवल का ज्ञान है, वो इंटेलेक्ट बेस्ड नॉलेज होता है। दूसरा ज्ञान जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और जो आपके रियलाइजेशन के बेस्ड पर होता है, जो आप खुद चीजों को रियलाइज करते हैं, जो आप खुद उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस्ड पर या रियलाइजेशन जो भी आप अनुभव करते हैं जो ज्ञान होता है वो एक दूसरा ज्ञान है। तो जो दर्शन शास्त्र है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उन ऋषियों का जिन्होंने दुनिया को दुनिया के चीजों को खुद एक्सपीरियंस किया रियलाइज किया, उस रियलाइजेशन के बेस्ड पर जो बताया, और दूसरे जिन्होंने इसको एनालाइज किया इंटेलेक्ट के बेस पर अपनी बुद्धि के द्वारा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है द नॉलेज बेस्ड ऑन इंटेलेक्ट एंड द नॉलेज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दर्शन शास्त्रों में मिलेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ जो लिटरेचर है या तो वो सेकेंड हैंड होते, कहीं से सुना देखा पढ़ा और अपने इंटेलेक्ट से उसको एनालाइज किया, फिर जो भी उसके एक अंडरस्टैंडिंग बनी वही ज्ञान है। दूसरा जो हम उपनिषद वगैरह में देखते हैं, जहां ऋषि मुनियों का अपना एक अनुभव का ज्ञान है, जिसमें किसी भी तरह की एक्सटर्नल कोटिंग नहीं है, और दर्शन शास्त्र उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता है। दर्शन शास्त्र के टॉपिक्स क्या हैं? हर दर्शन शास्त्र का एक फोकस पॉइंट होता है, पर कमनली जो छह के छह दर्शन शास्त्र आज हम चर्चा करेंगे, उन दर्शन शास्त्रों के द्वारा जिन चीजों का ज्ञान हमें पता लगता है वो ये है कि दुनिया की क्या रियलिटी है, मैं कौन हूं, ये यूनिवर्स क्या चीज है, संसार, इस संसार और मेरे बिहाइंड में पीछे कौन सा ऐसा तत्व है जो इसको चलाता है, हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, मेरे संसार के बीच में, संसार का परमात्मा के बीच में, परमात्मा के मेरे बीच में, परमात्मा है या नहीं, ऐसा नहीं कि कोई वैसे ही पहले से अज्यूम करके चले परमात्मा है, नहीं, उसको लॉजिकली क्या लॉजिक्स हैं जिसके द्वारा हम प्रूव करके कोई चीज है या नहीं है। दर्शन शास्त्र का एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप आंख बिल्कुल मान के चलिएगा, दर्शन शास्त्र किसी भी चीज पर बिलीव नहीं करता। इट्स नॉट ए लिटरेचर बेस्ड ऑन एनी टाइप ऑफ बिलीव सिस्टम और फेथ सिस्टम। जो भी उनके पास प्री अजम्पशन है, पहले से कोई भी ज्ञान उनके पास है, उसको भी वो कसौटी पर डालते हैं। अभी हम उनका डिस्कशन करेंगे कि वो सच है या झूठ है। नंबर टू, जो मनुष्य का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कि ये लाइफ, हम रोज मरते हैं, हमारे आसपास लोग पैदा होते हैं और हम बहुत सारे दुखों से गुजरते हैं, सुख की इच्छा करते हैं, तो इन सब का भी जो एनालिटिकल अध्ययन है, स्टडी है, वो आपको दर्शन शास्त्रों में मिलेगा। ये लाइफ क्या है, मरना क्या होता है, मरने बाद कुछ होता है या नहीं होता है, इस सुख दुख क्या होता है, लोग क्यों सफर करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, इन सब का भी विश्लेषण आपको दर्शन शास्त्रों में मिलेगा। अगला है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम पैदा तो हो गए पैसा कमाने के, खाने खाते हैं, पीते हैं, जिसके लिए, उसके लिए जो जरूरत है पैसा कमाना या जो भी वो भी करते हैं, तो एक्चुअली एक लाइफ का गोल कुछ होता है या नहीं होता है। और जो दुख सुख के चक्र में हम पड़े रहते हैं, कभी सुख भोगते हैं कभी दुख भोगते हैं, इसे छुटकारा पाने का उपाय क्या है, ये भी सब दर्शन शास्त्र डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया उनका मेन टॉपिक। और जो इन सब टॉपिक्स को डिस्कशन करने के लिए, इन सब टॉपिक्स को ठीक ठीक जानने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, उन इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन के थ्रू दर्शन शास्त्र का एक सेकेंडरी थीम है जो आगे जाकर बहुत डेवलप हुआ, वो है कि एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। कोई भी ज्ञान, कोई भी जो आप हमें कोई चीज पता है, क्या क्या उसके मीन्स हैं, क्या रिलायबल टूल्स या मीन्स हैं जिसके द्वारा हम ये परख सकें कि जो ज्ञान मेरे पास है वो राइट है या रंग है, या जो ज्ञान हमें किसी से मिला, कोई बुक पढ़ के, मीडिया देख के, कहीं से भी मिला, वो ज्ञान सही है या गलत है, उसको परखने की जो टेक्निक है उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान की मीमांसा। उसकी जो मेथड है, वैलिडिटी है, रियलिटी है, वो जानेंगे। फिर एथिक्स, डेफिनेटली जब आप सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपका एथिक्स क्या होना चाहिए, आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। मेटाफिजिक्स, ये भी सेकेंडरी थीम में आता है दर्शन शास्त्रों का। ये जो संसार है, संसार के जो एवरी एलिमेंट है उसको बारीकी से उसकी मीमांसा करना, उसका डिस्कशन करना, तत्व मीमांसा। और इसी तरह लॉजिक्स, रीजनिंग्स, लॉजिक का क्या क्या, किस तरह के लॉजिक सही होते हैं, क्या गलत होते हैं, इनको भी जानेंगे। लैंग्वेज की जो फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है, सृष्टि ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोग्राफी जो सृष्टि प्रक्रिया, ये सब चीजें भी हम दर्शन शास्त्रों में जानने की जान पाते हैं। तो कितने दर्शन शास्त्र हैं? छह दर्शन शास्त्र हैं और छह न्याय दर्शन, जिसका फाउंडर आचार्य हैं गौतम, अक्षपाद गौतम। ये गौतम गौतम बुद्ध नहीं है, वो गौतम बुद्ध अलग हैं, ये ऋषि गौतम अलग है जो न्याय दर्शन के फाउंडर आचार्य हैं। वैशिष्टिक दर्शन के ऋषि कणाद, मीमांसा दर्शन इसके फाउंडर हैं ऋषि जैमिनी, वेदांत दर्शन इसके संस्थापक आचार्य फाउंडर आचार्य हैं वादरायण या व्यास, संख्य दर्शन के फाउंडर आचार्य हैं कपिल ऋषि और योग दर्शन के आचार्य हैं पतंजलि ऋषि। तो जब हम कहते हैं फाउंडर आचार्य, तो फाउंडर आचार्य का मतलब जिन्होंने इस दर्शन शास्त्र पर पहला ग्रंथ लिखा या पहला थॉट प्रोसेस हमारे सामने लाए। और जनरली ये जो ग्रंथकार होते हैं, जो राइटर्स हैं जिन्होंने ये दर्शन शास्त्र सबसे पहले लिखा, वो सब सूत्रकार हैं। आप कहेंगे सूत्रकार क्या है? सूत्रकार मतलब जिसने एक सिस्टमेटिक वे में एक शॉर्ट एफोरिज्म के थ्रू बातें लिखी। जैसे आप अलजेब्रा वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें फॉर्मूलाज होते हैं, छोटे छोटे एफोरिज्म्स होते हैं, मतलब बहुत कंडेंस्ड वे में एक बहुत बड़ी बातें कह जाना। तो ऋषियों ने कोशिश की अपने थॉट्स को, विचार को बहुत कंडेंस्ड वे में रखने की। वो जो कंडेंस्ड वे में जो सेंटेंस बनाया जाता है उसको कहते हैं सूत्र, मतलब जहां एक दो वर्ड्स की एक वाक्य है, सेंटेंस है, जिसको समझने के लिए आपको चार पेज की पांच पेज की इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सारे फाउंडर आचार्य सूत्र स्टाइल में लिखा है, और क्योंकि सूत्र स्टाइल में है तो उसको समझने के लिए फिर इंटरप्रिटर्स आए, इनको हम कहते हैं भाष्यकार। अब भाष्यकार जब आते हैं वो सिंपल इंटरप्रिटेशन तो नहीं करते हैं, वो फिर अपना इनपुट डालते हैं, जिसके कारण आगे जाकर के फिर उसमें काफी सारे डिफरेंसेस हो जाता है, फिर धीरे धीरे एक अलग स्कूल्स पैदा हो जाते हैं, सेक्ट पैदा हो जाते हैं, फिर समय के अनुसार वो इंटरप्रिटेशन जब समझना मुश्किल होता है फिर इंटरप्रिटेशन का इंटरप्रिटेशन होता है। इसी तरह भाष्य, टीका, टिप्पणी, ग्लॉसेस, नोट्स, कमेंट्री के ऊपर कमेंट्री ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये छह दर्शन शास्त्र हैं। तो पहला दर्शन शास्त्र जिसकी चर्चा आज करेंगे वह है न्याय दर्शन, जिसका पहला ग्रंथ है। हर दर्शन शास्त्र में सैकड़ों ग्रंथ होते हैं, आज की डेट में सैकड़ों ग्रंथ मिलते हैं, पर जो मूल ग्रंथ है जिसके बेस पर पूरा का पूरा दर्शन, वो पूरा का पूरा दर्शन सिस्टम एस्टैब्लिश करता है, वो बेसिकली सूत्र ग्रंथ है। तो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है न्याय सूत्र, और उस न्याय सूत्र के जो रचयिता हैं, जो फाउंडर हैं, उनका नाम गौतम, उनको अक्षपाद भी कहा जाता है, कोई लोग उसको अक्षपाद गौतम कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये गौतम गौतम बुद्ध से बिल्कुल अलग है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। जो इस न्याय सूत्र के गौतम के बाद जो न्याय दर्शन में सबसे बड़े विद्वान आए, जिन्होंने इस पर सबसे पहला कमेंट्री लिखी, वो है वात्स्यायन। उसके बाद बहुत सारे कमेंटेटर आए, बहुत सारे फिर तो वो अलग अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट के साथ फिर तो आगे बढ़ता गया। ये न्याय दर्शन क्या चीज है? मतलब न्याय समझते ही, सुनते ही आपके मन में हिंदी में न्याय आ जाता है, मतलब न्यायालय, कोर्ट होगा, जस्टिस है, कोई कानून की बात होगी। नहीं, इसका कानून, जस्टिस, लॉ, इससे कोई लेन देन नहीं है। न्याय का सिंपल मीनिंग होता है लॉजिक, रूल्स, सिस्टम। ये दर्शन शास्त्र वो दर्शन शास्त्र है जिसका फोकस है लॉजिक। वैसे हर दर्शन शास्त्र दो चीजें बताते हैं, इसको हम कहते हैं प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण का अर्थ होता है मीन्स ऑफ नॉलेज, कैसे हम ज्ञान को पाएंगे, और प्रमेय मतलब उस ज्ञान का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे ज्ञान के ऑब्जेक्ट में आएगा संसार क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये सब चीजें, कुछ भी जो भी चीजें आप जानना चाहते हैं वो सब प्रमेय में आ जाता है। प्रमाण उसको जानने की तरीका क्या है। न्याय दर्शन का ज्यादातर फोकस है प्रमाण पर। प्रमाण मतलब एपिस्टेमोलॉजी, किसी भी ज्ञान को जानने की बेस्ट तरीका क्या है, सबसे रिलायबल परफेक्ट वे क्या है, क्या क्या मीन्स हैं, इन चीजों पर न्याय दर्शन का बेसिक फोकस है। और उसमें जो न्याय दर्शन में डिस्कशन हुआ, जो ज्ञान पाने की जो अलग अलग तरीके हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है वो है अनुमान, इन्फरेंस। और उस अनुमान के लिए आपको लॉजिक बहुत जरूरी है, रीजनिंग उसका बेस है। इसीलिए न्याय दर्शन बेसिकली रीजनिंग और लॉजिक पर ज्यादा बात करता है। और उस जो मेथोडोलॉजी कैसे किसी भी ज्ञान को, न्याय का उस दुख का कारण है अज्ञान, चीजों को ठीक ठीक ना समझना, गलत समझना, यही दुख का कारण है। तब तक आप चीजों को सही तरीके से नहीं समझोगे, आपका दुख कभी नहीं दूर होने वाला। तो सही तरीका, सही ज्ञान को न्याय दर्शन कहता है यथार्थ ज्ञान, जो जैसा है आप इसको एज इट इज जानोगे, विदाउट कमा, फुल स्टॉप, कोई बिंदी डॉट कुछ नहीं। जो जैसा है, कोई लाल है तो लाल ही आपको ज्ञान हुआ, अगर लाल का कोई पर्टिकुलर शेड है तो शेड का आपको ज्ञान होना, जब तक आपको उसका एक्यूरेट नॉलेज नहीं हो जाता तब तक आपका ज्ञान सही नहीं है। और जब तक आपको कम ज्ञान है या उल्टा ज्ञान है तो आप दुखी रहेंगे। उस करेक्ट ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को जानने की जो रिलायबल मीन्स है उसको कहते हैं प्रमाण। हमारे यहां प्रमाण, उस प्रमाण को पहले समझना जरूरी है, ऐसा न्याय दर्शन का मानना है। और न्याय दर्शन इसके लिए चार रिलायबल मीन्स मानता है कि जिसके थ्रू आपको सही ज्ञान मिल सकता है, और वो क्या है, इसको कहते हैं प्रमाण। कहते हैं प्रत्यक्ष, जो परसेप्शन है, जो आप इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा जिस ज्ञान को पाते हैं वो प्रत्यक्ष। अनुमान, जो इन्फरेंस जिसकी चर्चा करेंगे। उपमान, कभी कभी कुछ चीजों को जानने के लिए हम कंपैरिजन या एनालॉजी के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं उपमान। और लास्ट शब्द प्रमाण, जो वो टेस्टिमोनी है, कोई रिलायबल एक्सपर्ट, कोई ग्रंथ हो या कोई व्यक्ति हो, वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, तो उसके जो या तो ग्रंथ जो रिलायबल पर्सन के द्वारा लिखा गया हो या रिलायबल पर्सन के द्वारा बताई गई बातें, वो टेस्टिमोनी हो सकता है, उसको कहते हैं वर्ड टेस्टिमोनी या शब्द प्रमाण। आप कहेंगे वो रिलायबिलिटी कैसे जाना जाए, उसके भी रूल्स रेगुलेशन है कि कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति रिलायबल है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पिता हो गया तो रिलायबल हो गया, तुम्हें जिसने ज्ञान दिया वही रिलायबल है, जो तुम्हें पढ़ाता है कहोगे मेरे गुरु ने बताया तो यही सही होगा, ये जरूरी नहीं है। ये तो ब्लाइंड बिलीव सिस्टम है, मेरे गुरु ने बताया तो सही है, मेरे पिता ने बताया तो सही है, मेरे अंकल ने बताया तो सही है, ये सब बचकाना चीजें हैं जो आजकल के बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी इस तरह के चाइल्डिश से सोच रखते हैं। रिलायबिलिटी की भी परख होना जरूरी है कि वो एक्चुअली कौन है। तो इसीलिए जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी दुखों से। और यथार्थ ज्ञान के लिए ये चार साधन प्रिस्क्राइब करता है न्याय दर्शन। और न्याय दर्शन सारे संसार के चीजों को जानने की दृष्टि से, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज की दृष्टि से 16 तरह से डिवाइड किया है। चीजों को कैसे जाना जाए उसको उन्होंने 16 तरह से डिवाइड किया है, जानने की अलग अलग जो जो कैटेगरीज हैं उसको वो पदार्थ कहता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज है पदार्थ, ये प्रमाण, अभी हमने डिस्कशन किया जो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान को जानने के लिए जो रिलायबल मीन्स हैं उसको प्रमाण कहते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एक्सेट्रा, हम डिटेल में नहीं जाएंगे और कभी डिस्कशन करेंगे। प्रमेय सेकेंड कैटेगरी ऑफ कैटेगरी दुनिया में जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ये ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन सा चीज है? प्रमेय। ये सारा संसार में हर वो चीज जो विजिबल है अनविजिबल है सब प्रमेय है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज ना। थर्ड कैटेगरी है संशय। संशय जो डाउट्स होता है हमारे मन में, ये चीज है नहीं है, जैसा मैं जानता हूं वो सही है गलत है, तो जो जो डाउट्स है दैट इज कॉल्ड संशय। प्रयोजन हमारा जो गोल है, दृष्टांत किसी भी ज्ञान को पाने के लिए जो आप एग्जांपल यूज करते हैं दैट इज दृष्टांत। सिद्धांत किसी भी चीज को जानने के बाद जो आप कंक्लूजन निकालते हैं दैट इज सिद्धांत। अन्वय, अन्वय कहते हैं द मेंबर्स ऑफ सिलोजिम। जब आप इन्फरेंस करते हैं जो चीजों को आप सामने नहीं जानते, आपको किसी ने कहा कि अमुक का पिताजी दिल्ली में रहते हैं, आपने कब देखा? आपने तो उनका ना पिताजी को देखा है ना दिल्ली में रहते हुए देखा है, पर आप मान जाते हैं। किसी व्यक्ति को देख करके आप 100% श्योर है कि उसके माँ बाप हैं, वह जिंदा है मरे हैं वो अलग बात है, मतलब माँ बाप से पैदा हुआ है ये श्योर है। कैसे पता चला कि इसका माँ बाप होंगे? तो जो चीजें नहीं है उस अनुमान प्रमाण का सहारा लेते हैं, इन्फरेंस का, और उस इन्फरेंस में जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है वह अन्वय। ये अन्वय क्या चीज होता है? ये अन्वय इट इज ए काइंड ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट। वो लॉजिकल आर्गुमेंट के लिए ध्यान दीजिए, आप लोग बहुत आर्ग्यू करते हैं ना एक दूसरे से, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, मीडिया में भी आप देखते हैं डिबेट होता है। आप जानेंगे नया दर्शन कितने तरह के डिबेट्स मानता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आप जानेंगे। तो जब भी आप कोई चीज को आर्गुमेंट के लिए लाते हैं तो उसमें 5 चीजें जरूरी हैं। उन 5 जो जो अंग हैं, उन 5 अंगों के द्वारा चीजों को प्रूव किया जाए उसको कहते हैं अन्वय। पहला चीज, जब भी आप कोई बात करते हैं सबसे पहले प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब प्रोपोजिशन। आप एक लॉजिकल स्टेटमेंट देते कि आज बारिश होनी है, धुआं कहीं सॉरी ये पहाड़ में आग है, ये प्रोपोजिशन है। आपने दूर से देखा एक पहाड़ में धुआं निकल रहा था तो आपने कहा इस पहाड़ में धुआं है, सो दैट्स योर प्रोपोजिशन, प्रतिज्ञा। फिर आप इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? तो आप इसके अलावा रीजन देते हैं, उसको कहते हैं हेतु। रीजन क्या है? रीजन है कि देखो वहां धुआं दिख रहा है, तो धुआं होने से क्या आग होता है? तो आप फिर आप उसके लिए उदाहरण यूज करते हैं। ये उदाहरण क्या चीज होता है? ये उदाहरण क्या होता है? कोई एक यूनिवर्सियल एग्जाम्पल जो दुनिया में बाकी जगह होता है, कॉज और इफेक्ट के बीच में एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आप एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं। जैसे आपने कहा कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, जैसे रसोई घर में जहां भी आग लगता है वहां धुआं, जहां जहां धुआं होता है वहां आग होता है। ये एक यूनिवर्सियल एग्जाम्पल है। फिर वो जो उदाहरण दिया उस थर्ड कंपोनेंट ऑफ दैट आर्गुमेंट उपनय, वो जो यूनिवर्सियल एग्जाम्पल को आपने, ये जो खुद आपने एक स्टेटमेंट दिया उस खुद के स्टेटमेंट के साथ आप इसको अप्लाई करते, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है। इसी तरह क्योंकि इस पहाड़ में धुआं है इसलिए यहां आग है, इसको कहते हैं उपनय। या यूनिवर्सियल एग्जाम्पल को प्रेजेंट केस में अप्लाई करना, देन द लास्ट इज निगमना, कंक्लूजन निकालना। अब तो आपने कंक्लूजन क्या निकाला, क्योंकि जहां जहां धुआं वहां वहां आग होता है, इसीलिए क्योंकि इस पहाड़ में धुआं दिख रहा है, मुझे पहाड़ में आग नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ धुआं दिख रहा है, बट क्योंकि धुआं दिख रहा है तो जरूर यहां आग होगा। तो दैट इज कॉल्ड अन्वय। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे चलते हैं। अगला जो कंपोनेंट है और वह है तर्क। अब हम जानेंगे जो हम डिबेट्स करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, वो हेल्दी डिबेट क्या है, अनहेल्दी डिबेट क्या है, उसका भी न्याय दर्शन बहुत डिटेल में डिस्कशन करता है। और आजकल तो आप पॉलिटिकल डिबेट्स टीवी में देखते हैं, और जब भी आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आपको पता है जिस तरह की आप बातें करते हैं, तो आप समझिए कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं जो बात रखते हैं, या दूसरे वाला कैसा रखता है। पहला चीज है तर्क। तर्क का होता है जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग आप प्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए जब आप हाइपोथेटिकल रीजनिंग देते हैं, दैट इज कॉल्ड तर्क। देन कॉल्ड निर्णय, जो सेटलमेंट है, जो रेजुलेशन है, आप किसी कंक्लूजन पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड निर्णय। उसके बाद आता है वाद। वाद कहते हैं, वाद एक ऐसा डिबेट है जिसमें दोनों, जो एक्सपोनेंट है वादी और जो अपोनेंट है प्रतिवादी, दोनों अपने अपने प्रमाण, प्रमाण मतलब जो भी एविडेंस है या मीन्स ऑफ नॉलेज, और तर्क जो रीजनिंग है, ये दोनों के बेस पर अपनी बात को एस्टैब्लिश करते हैं। जो भी बात उन्होंने कहा कि यह आदमी चोर है या आदमी अच्छा है। अब ये चोर क्यों है, आप कहोगे जी मैंने किसी से सुना, ये दौड़ते हुए देखा, बोला, ये सब चाइल्डिश लॉजिक है। ये चोर है, आपके पास इसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या रीजनिंग है वो आप रखते हैं, अपनी चीजें रखते हैं प्रमाण और तर्कों के साथ। और जो अपोनेंट आपका है, अगर वो मानता है कि ये चोर नहीं है, तो उसकी बात को भी आप उसी लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ खंडन करते हैं, तो उसको कहते हैं वाद। इट्स द बेस्ट वे ऑफ डिबेट। एक आइडियल डिस्कशन है जहां प्रूफ्स रीजनिंग के साथ एक दूसरे की बात को काटते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अपोनेंट की बात को काटते हैं, दैट इज कॉल्ड वाद। जल्प क्या चीज है, जल्प भी एक तरह का डिबेट है, रैंगलिंग है। अब इसमें क्या होता है, जहां दोनों पार्टी, वो एक्सपोनेंट वादी हो या प्रतिवादी अपोनेंट हो, जहां दोनों के दोनों कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करना, कोई प्रूफ नहीं देना, कोई रीजनिंग नहीं देना, बस अपनी बातें को बोलते जाना, मैं ऐसा मानता हूं, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, और खूब जोर जोर से चिल्लाना, झगड़ना, अपनी बात को जोर जोर से बोलना, बिना दूसरे की बात सुने, बिना कुछ प्रूफ रखे, बिना कुछ रीजनिंग रखे, तो अपनी बात को बोलते जाना, उस पर स्टैंड लेना, दैट इज कॉल्ड जल्प। ये अनदर टाइप ऑफ आर्गुमेंट या डिबेट। उसके बाद होता है वितंडा। ये वितंडा भी बहुत लोग करते हैं। वो क्या होता है, जब आप अपनी बातें कुछ नहीं रखते हैं, ना अपनी बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, आपका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, सामने वाले को जो कुछ भी बोले उसको काटना, उसको अटैक करना, सामने वाले पर, प्रतिवादी पर, अपोनेंट पर बार बार अटैक करना, उसकी बात को रिफ्यूट करना, खंडन करना, अपनी बातों को एस्टैब्लिश करने के लिए एक भी प्रूफ नहीं देना पर सामने वाले को काटते रहना, इस टाइप की जो डिबेट होते हैं उसको कहते हैं वितंडा, है ना, जो मोस्टली ऑफेंसिव होते हैं। अगला है हेत्वाभास, फेलिशियस आर्गुमेंट, मतलब आप अपनी बात को रखने के लिए जो आर्गुमेंट कर रहे हो उसमें जो भी आप रीजनिंग, कारण या हेतु देते हो, वो हेतु कारण जो है वो कारण नहीं है, वो कारण जैसा दिखता है, या तो वो फॉल्स रीजन है या वो it looks like a region, या contradict करता है जो आप बोलते हो उसी को ही contradict करता है, या वो जो आपने reasoning दिया वो well proved नहीं है, उसके बावजूद भी आप ऐसे reasoning दे देकर अपनी बात को साबित करने की कोशिश करते हो। अब एक छोटा example देते हैं, आपको मजा आएगा। अब किसी ने कहा कि भाई जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता है, अच्छा आपने सुना। तो आपने एक दिन गया तालाब में, पानी जहां पानी है वो ठंड के मौसम में तालाब में जो पॉन्ड है तो उसमें से वो स्टीम निकलता है, भाप निकलता है। जब आप ठंड में मुंह में हा कर दे तो आपके मुंह से भी वो भाप निकलता है। तो आपने कहा कि मेरे मुंह के अंदर आग होगा, देखो तालाब के अंदर आग है। कारण क्या है? धुआं निकल रहा है। वो धुआं नहीं है, वो धुआं जैसा दिखता है, वो धुआं जैसा दिखता है, धुआं नहीं है। इसीलिए धुआं हेतु होता है, धुआं इज ए रीजन टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर। पर उस धुआं जैसा दिखने वाला स्टीम वो हेतु का आभास करता है, वो एक फॉल्स रीजन है जहां आग होता नहीं है। पर आप आर्ग्यू करते हो क्योंकि देखो यहां भी धुआं है इसीलिए आग, उसको कहते हैं हेतु आभास। अगला है छल। छल में क्या होता है, ये मीडिया में आप बहुत देखते हैं इस तरह का डिबेट, ये छल वाला। छल में क्या होता है कि आप दूसरों के शब्दों के साथ खिलवाड़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। किसी ने कुछ भी बोला, उसने बोला एक दूसरे इंटेंशन से, उसने बोला एक दूसरे मीनिंग से, पर आपको उसको नीचा दिखाना है, उसको हराना है, तो आप रियल डिबेट ना करके उसकी सेंटेंस में से कोई वर्ड को तोड़ मरोड़ के उसकी मीनिंग को छेड़छाड़ करके मैनिपुलेट करके उसकी बात को काटना या उसका बुरा दिखाना, उसको रंग दिखाने की जो कोशिश है, इसको कहते हैं छल। अगला है जाति। जाति होता है जब फॉल्स एनालॉजी, कोई समानता सिमिलरिटी ऐसे दिखाया जाए जो सिमिलरिटी उसमें नहीं है, पर फॉल्स सिमिलरिटी दिखा करके बातों को प्रूव करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं जाति जाति। अगला है एक मिनट दीजिए, निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान का मतलब डिबेट में हारने का जो ग्राउंड होता है उसको कहते हैं। जब आप भी अपनी जब आप कोई चीज डिस्कशन करते हैं उसमें अपनी बात अपने आप को पराजय अपना पराजय या डिफीट स्वीकार करने के दो रीजन है, उसको कहते हैं निग्रह स्थान। और वो पॉइंट क्या है, डिफीट पॉइंट क्या है, या तो आप जो आर्गुमेंट दे रहे हो उसमें आप स्टैंड नहीं कर पा रहे हो, उसको ठीक से आप सब खुद नहीं समझा, या दूसरा जो आर्ग्यू कर रहा है उसको भी आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप खुद के आर्गुमेंट को या दूसरे के आर्गुमेंट को या दोनों में से किसी एक को समझ नहीं पा रहे हो या गलत समझ रहे हो, तो आप वो जो पॉइंट है, वो जो ग्राउंड है, वो हारने का पॉइंट होता है। तो न्याय दर्शन इस तरह 16 पदार्थ पर काम करता है। और आपको आपको देखा होगा कि ये न्याय दर्शन आपके ही धर्म ग्रंथ हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक धर्म ग्रंथ है, एक रिलीजियस बुक है, जो किस पर काम करता है, डिबेट कैसे हो, ज्ञान पाने की एब्सोल्यूट तरीका क्या है, ऐसा शास्त्र है न्याय। इसके अलावा न्याय दर्शन में जो प्रमेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, मुख्य क्या है, उन पर भी डिस्कशन है, पर उसका मेन फोकस ये एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा और उसकी प्रक्रिया पर है। अगला जो दर्शन शास्त्र है वो है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के मूल ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, और उसको लिखने वाले हैं महर्षि कणाद, और उनका जो सबसे पहले आचार्य जिन्होंने इस पर कमेंट्री लिखी, भाष्य लिखा, वो है प्रशस्तपाद। उसके बाद तो बहुत सारे भाष्य लिखे गए, वो हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। इसको वैशेषिक दर्शन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये विशेष से रिलेटेड है। विशेष समझते हैं, विशेष का मतलब होता है डिस्टिंक्शन या पर्टिकुलरिटी, ऐसा कोई फीचर जो डिस्टिंग्विश करे, है ना। अब आप कहेंगे आप एक मनुष्य है, मैं भी एक मनुष्य हूं, वो भी एक मनुष्य है, तो ये तो सामान्य हो गया ना, ये तो कमनैलिटी है, एक एक, एक कमननेस है। पर मैं आपको बुलाना चाहूं, आपको आइडेंटिफाई करना चाहूं, तो मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें आप में ढूंढूंगा जो आपको दूसरों से डिस्टिंग्विश करे, अलग करे। भाई इनकी ये इस तरह के चश्मा पहनते हैं, इनका बाल ऐसा है, इनका शक्ल ऐसा है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ये सब चीजें जो स्पेसिफिक क्वालिटीज होते हैं वो आपको डिस्टिंग्विश करता है। तो वैशेषिक दर्शन का मूल विषय यही है, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर को आइडेंटिफाई करना, और उसके बेस पर उनको तभी जा करके हम जान पाएंगे कि संसार में चीजें क्या हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी जी बहुत है। जब तक आप उसमें वो डिस्टिंग वो जो पर्टिकुलरिटी नहीं लाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा आत्मा परमात्मा अलग है या नहीं है, मैं और आप में क्या अलग है। जब तक आप इसको एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन हूं और आप कौन है, वो कौन है। तो क्योंकि वैशेषिक दर्शन का यही फोकस पॉइंट है इसलिए इसको वैशेषिक दर्शन कहते हैं। वैशेषिक दर्शन प्राइमरीली फिजिक्स जो पदार्थ विज्ञान है और मेटाफिजिक्स इन चीजों पर काम करता है, और उसने जो भी संसार में चीजें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस हैं प्रमेय, उसको उन्होंने 6 कैटेगरी में बांटा और बोला कि संसार में कितने भी जो भी चीजें हैं, ध्यान दीजिए, वो एट द एंड ऑफ द डे जो फिजिकल यूनिवर्स जो मैटेरियल यूनिवर्स वो रिड्यूसेबल होते हैं, और जब वो एट द एंड ऑफ द डे वो एटॉम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं परमाणु में, और वो परमाणुओं की जो नंबर है, एटॉम्स की जो नंबर है वो फाइनाइट नंबर है, और हर वस्तु हर वो भौतिक पदार्थ मैटेरियल थिंग वो परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है, फिर परमाणु से उसकी सृष्टि होती है। तो वैशेषिक दर्शन संसार में 6 तरह के चीजों को मानता है। एक है द्रव्य जिसको आप सबस्टेंस कहते हैं, जो सबस्ट्रेटम है, जितने भी दुनिया में एग्जिस्टेंस हैं तो उन सबका जो सबस्ट्रेटम है उसको द्रव्य कहते हैं, और यही मैटेरियल कॉज है, सारे जो भी चीजें संसार में पैदा होते हैं तो उनका ये मैटेरियल कॉज यही है। उसकी नंबर उन्होंने 9 बताया, पृथ्वी जल अग्नि। जब मैं पृथ्वी कहता है तो पृथ्वी मतलब पृथ्वी ग्रह नहीं, सॉलिड तो सॉलिडिटी है, जल मतलब जो लिक्विडिटी है, फायर मतलब एनर्जी है, एयर मतलब जो गैस है, ईथर मतलब जो वैक्यूम है, टाइम स्पेस आत्मा और मन। तो ये 9 चीजों को द्रव्य मानते हैं। फिर गुण जो उनमें जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो क्वालिटीज होते हैं, वो भी डिस्कशन का टॉपिक है। वो बेसिकली वैशेषिक दर्शन ने 24 गुण माने हैं। कर्म जो एक्टिविटीज होते हैं, दुनिया में कोई भी चीज है, वो सेंटिएंट हो या इनसेंटिएंट हो, उनके अंदर जो फंक्शन होता है, जो एक्शन चलता रहता है, उसको भी समझने के उसका नाम है कर्म। और ये सामान्य दुनिया में कोई भी पदार्थ है उसमें एक और एक क्वालिटी है, वो है जेनरलिटी, कॉमननेस। किसी ना किसी पदार्थ के साथ उसकी कॉमननेस है, उस कॉमननेस को आइडेंटिफाई करना, तभी आपको समझ में आएगा कि चीजें किस किस से मिलती, उसको कहते हैं सामान्य। विशेष उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है जो उसको दूसरों से डिफरेंट करता है। आप दो आम ले आएंगे, बाजार से आम लाते हैं ना, तो आम अमरूद से अलग है, ग्वावा से अलग है, वो संतरे से अलग है, एप्पल से सेब से अलग है, ये जो किस कारण से अलग है, भाई सारे तो फल है, सारे फल है, ये उनकी सामान्य है, जनरलिटी है, कॉमननेस है। पर आम में कुछ क्वालिटी जो है जो बाकी फलों से उसको अलग करता है, वो उसका विशेषत्व है। अब 10 आम लाएंगे, 10 आम एक दूसरे से अलग हैं, क्यों अलग है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज विशेषण। और क्या चीज है? आज का टॉपिक थोड़ा आपको हैवी लगेगा क्योंकि डेफिनेटली ये दर्शन है, पर आपको पता होना चाहिए आपके किस तरह के शास्त्र हैं। समवाय, हर वस्तु के अंदर जो इनहेरेंट इनहेरेंस होता है, एक ऐसा नेचर होता है जो इनहेरेंट इनबिल्ट है, जो उससे इन सेपरेट करना मुश्किल है। जैसे लाल कलर में जो लालपन है उसको अलग नहीं कर सकते ना, इंसान में जो इंसानियत है, फल में जो फल का पन है, वो उसके इनहेरेंट नेचर है, वो भी समझना है। और बाद में वैशेषिक दर्शन में वैसे तो वो छह पदार्थ मानते हैं, आगे जा करके उसमें एक और चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, अभाव। अभाव का मतलब होता है एब्सेंस, कि दुनिया में चीजों को जानने के लिए उनके एब्सेंस भी एक एक पदार्थ है, तो एब्सेंस। और जो वैशेषिक पर वैशेषिक दर्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आजकल मॉडर्न एज में बहुत यूजफुल है, वैशेषिक दर्शन का मानना है कि दुनिया में हर वो मैटेरियल चीज का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो इंडिविजिबल है, और वो जो इंडिविजिबल अविभाज्य जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको परमाणु कहते हैं, एटॉम कहते हैं। और उन परमाणुओं का जो कॉम्बिनेशन है, एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है, उसी से ये सारा संसार बना हुआ है। और ये जो परमाणु बाय नेचर मोशनलेस है, उनमें मोशन नहीं है, परमात्मा की इच्छा से या परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की शक्ति से उनमें मोशन आता है और वो अनसीन होता है, और उस मोशन से फिर दुनिया में चीजें बनती है। ये जो एटॉमिक थ्योरी है संसार में, सबसे पहले इसी वैशेषिक दर्शन में इसकी बातें आई। वो परमाणु की क्या, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे वो डिफाइन करते हैं। तो वैशेषिक दर्शन का मानना है संसार में जो भी चीजें हैं उन चीजों को जब आप तोड़ेंगे, शटल पार्टिकल के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पार्टिकल आपको, आप जिसको देख सकते हो, सबसे छोटा पार्टिकल, देखने लायक पर छोटा पार्टिकल, उसको कहा त्रसरेणु। त्रसरेणु वो पार्टिकल है, वो धूल की कणा है, कण है, जो सूरज की रोशनी जब आपके खिड़की से अंदर आता है, वो खिड़की के अंदर आने वाले रोशनी से आपको कभी कभी वो अपने घर की धूल छोटी छोटी दिखते हैं, उसको कहते हैं त्रसरेणु। और वो त्रसरेणु जो परसिवेबल है, जिसको आप देख सकते हैं, हर वो त्रसरेणु तीन, उसके तीन पार्ट से वो बना हुआ होता है, उसके तीन डिवीजन करेंगे उसको कहते हैं त्रयणु का। हर त्रसरेणु तीन अणु से जुड़, तीन अणुओं के मिलने से बना है, उसको कहते हैं त्रयणु का। वो त्रयणुकों को भी जब हम तोड़ेंगे तो हर वो त्रयणुक पार्टिकल द्विअणुक है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। और हर वो द्विअणुक को जब आप तोड़ेंगे तो उसकी जो पार्टिकल है वो है परमाणु, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और वो नित्य है। तो इसी कारण ये जो संसार मैटेरियल वर्ल्ड है वो परमाणु रूप में नित्य है, विजिबल रूप में तो अनित्य है, वो ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। और ये सभी संसारों में, संसार के हर मैटेरियल वर्ल्ड में होता है। अगला दर्शन शास्त्र है, ये आपको बुक दिखाना, ये है वैशेषिक दर्शन, ये न्याय दर्शन है, महर्षि गौतम ऋषि द्वारा लिखित। अभी जो हमने डिस्कशन किया वैशेषिक दर्शन, ये महर्षि कणाद के द्वारा लिखित। अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो है सांख्य दर्शन। मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, शायद उल्टा दिख रहा होगा। तो ये है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ है सांख्य सूत्र, उसके फाउंडर आचार्य हैं कपिल। सांख्य सूत्र के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी वैदिक फिलॉसफी हैं छह तरह के, उन छह वैदिक दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है, द ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ वैदिक कल्चर। सांख्य, इसका नाम सांख्य इसीलिए है क्योंकि ये सारे संसार को 25 एलिमेंट में, 25 तत्वों में काउंट करता है। सांख्य का मतलब होता है काउंट करना, काउंट करने वाला। और सांख्य का मानना है जब तक आप इस संसार के तत्वों को ठीक ठीक नहीं समझोगे तब तक आप दुखों से आपको निवृत्ति नहीं मिलने वाली। तो वो 25 तत्व मानता है कि इन 25 तत्वों से सारा संसार में सब कुछ है, इंक्लूडिंग आत्मा परमात्मा जीव सब कुछ। और इनका जो एक कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है उसी इंटर रिलेशन के बेस पर अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट आता है, अव्यक्त से व्यक्त, अदृश्य से दृश्य संसार बना होता है। और ये 25 तत्वों का जो बेसिक चीज है वो दो हैं, पुरुष जो चेतना स्वरूप है, प्रकृति जो जड़ है, जड़ समझते हैं मैटेरियल है। पुरुष आत्मा चेतना और प्रकृति जड़ तत्व है। और इन दोनों को, अब इनकी दोनों के रिलेशनशिप कैसा है, फेल मेल और फीमेल के तरह है। ये दोनों मेल फीमेल के रिलेशनशिप के तरह साथ में होते हैं और यही दोनों के मिलने से ये जो सारा संसार यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स का फाउंडेशन इन्हीं दोनों के ऊपर टिका हुआ है। ये हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और सांख्य दर्शन का जो एक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है वो है परिणामवाद। परिणामवाद, ये सारा संसार ट्रांसफॉर्मेशनल मैनिफेस्टेशन पर टिका है। संसार भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। ये संसार परमाणु से बनता है और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, नए नए रूप बदलते रहते हैं। एक पेड़ है, पेड़ को आप काटेंगे लकड़ी बन जाएगी, पेड़ का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हुआ, लकड़ी के रूप में चेंज हो गया, परिणाम हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। उस लकड़ी को आप कारपेंटर को बुला के कुछ बनाएंगे, चेयर टेबल बेड बन जाएगा। पेड़ अभी भी है, ट्रांसफॉर्म हो गया बेड के रूप में। बेड को आप काटेंगे पिटेंगे उसको आप जलाएंगे राख बन गया, तो वो पेड़ अब राख के रूप में ट्रांसफर हुआ। फिर उसको आप और तोड़ेंगे तो वो उसका जो लास्ट पार्टिकल है परमाणु, उस परमाणु रूप में बना रहेगा। फिर इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता रहता है। उसकी जो परमाणु रूप है, सांख्य उसको परमाणु नहीं कहता है, जिसको वैशेषिक दर्शन परमाणु कहता है वो उसको कहता है तीन गुण, सत्व रज तम गुणात्मक प्रकृति। गुण आप कह सकते हैं जो इननेट नेचर है, जो इननेट टेंडेंसी है, इन तीनों की तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है उसको प्रकृति बोलते हैं, प्राइमोडियल स्टेज ऑफ यूनिवर्स, और उससे संसार बनता है उसको कहते हैं विकृति। ये एक चार्ट है, वो तो हम जब सांख्य दर्शन पढ़ते हैं या पढ़ाएंगे तब डिटेल में समझेंगे। परमात्मा नोअर है, जो पुरुष है, और जो प्रकृति है वो अज्ञा है, जड़ है। इन दोनों से मिलने के बाद पैदा होता है महत्तत्व, अहंकार। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बोर होंगे, तो इस तरह के ये सांख्य दर्शन का ये टॉपिक है। अगला आते हैं योग दर्शन। आप में से तो बहुत लोगों को योग दर्शन के बारे में पता है। योग दर्शन का, अच्छा योग दर्शन कहते ही सीधे आप मत चले जाइए, आजकल योग दर्शन का मतलब लोग समझने बैठ जाएंगे कि भाई ये जो हम योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योग है वो। योग अलग है, वो योग है नो डाउट, पर योग दर्शन, दर्शन तो ज्ञान का विषय है ना। तो इसका जो प्रथम ग्रंथ हमें अवेलेबल होता है, द फाउंडेशनल जो टेक्स्ट है वो है योग सूत्र, और उसको लिखने वाले हैं महर्षि पतंजलि, उस पर जो सबसे पहला भाष्य का जो कमेंटेटर है वो है महर्षि व्यास। और योग दर्शन का जो थ्योरी पार्ट है वो सांख्य दर्शन में जो है वही योग दर्शन का, सांख्य और योग ट्विन्स हैं, एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। योग दर्शन एक तरह का फिलॉसफी ऑफ प्रैक्टिस, जब तक आपने जो जाना संसार क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, इसको थ्योरी के रूप में आप अलग अलग दर्शनों में जानते हैं, जानने के बाद आप इसको रियलाइज करेंगे। रियलाइज कैसे करेंगे, रियलाइज कैसे करेंगे, उसकी जो मेथोडोलॉजी है वो योग दर्शन बताता है। और उसको जानने के लिए जो सबसे जरूरी है कि आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। फोकस्ड होने के लिए आपकी जो मन है और मन की जो वृत्तियां है, जिस तरह के एक्टिविटीज हैं, वो भाग दौड़ करता रहता है माइंड, उसको पकड़ना जरूरी है। इसीलिए योग दर्शन में ज्यादातर जो पोर्शन है वो इस पर डिस्कशन है कि ये माइंड क्या चीज है, ये कैसे फंक्शन करता है, इसकी क्या एक्टिविटीज हैं, एक पर्टिकुलर वे में फंक्शन करने से आप किस तरह आपको आपको इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके लाइफ में, फिर उसको कैसे काउंटर करने की जरूरत है। तो ये सब जो डिटेल में डिस्कशन है, आप कह सकते हैं दुनिया में जो सबसे पुराना साइकोलॉजी का जो टेक्स्ट बुक है वो जो जो एक ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट बुक है वो योग दर्शन है। वैसे तो मनो माइंड पर वेदों में, उपनिषदों में बहुत सारी जगह हमें उसकी चर्चा मिलती है, पर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमिक वे में जो उसकी साइंटिफिक डिस्कशन मिलता है वो योग दर्शन में मिलता है। उस मन को कैसे हमें ठीक समझना है, उसको काउंटर करना है, उसको रोकना है, वो योग दर्शन का विषय है। और उसके अलावा वो योग दर्शन प्रेस्क्राइब करता है जो फेमस अष्टांग योग, आठ तरह के जो योग है वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें कुछ चीजें एथिक्स रिलेटेड हैं, कुछ चीजें फिजिकल, मेंटल और नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने से रिलेटेड हैं, कुछ चीजें मन को फोकस करने के रिलेटेड हैं। ये पांच बाहरी अंग हैं योग के, और तीन इंटरनल है जो धारणा, ध्यान, समाधि, वो माइंड के ऊपर काम करने का काम है। तो इस तरह जब आप समाधि लेवल पर पहुंचते हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, तो वो जो लास्ट स्टेज होता है जहां आप सेल्फ को रियलाइज करते हैं। और जब आप सेल्फ को रियलाइज करते हैं आप एब्सोल्यूट हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं, आपको दुनिया से एक्सटर्नली इंटरनली कहीं से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। यू आर देयर एब्सोल्युटली विथ योर सेल्फ, That is called the स्टेज ऑफ आइसोलेशन। योग दर्शन कहता है कैवल्य, यही स्टेज है आत्मज्ञान का, वो योग दर्शन का विषय है। और जो दो दर्शन हम थोड़ा संक्षेप में ले लेंगे, मुझे पता है ये थोड़ा हेवी आपको हो रहा है। अगला दर्शन है मीमांसा दर्शन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग दर्शन है। आपने पता नहीं नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा मीमांसा दर्शन। इसका पहला ग्रंथ है मीमांसा सूत्र, जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है, और इसके जो फाउंडर आचार्य हैं ऋषि जैमिनी, और जो अर्ली कमेंटेटर जो उसके प्रथम भाष्य है आर्ष भाष्य, वो शबर भाष्य है, शबर मुनि या शबर स्वामी के द्वारा लिखा गया। मीमांसा का सिंपल मीनिंग होता है किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचना, मनन करना, चिंतन करना, उसका जो क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करना, उसको कहते हैं मीमांसा। तो मीमांसा दर्शन का मेनली काम है वेद के वाक्यों को ठीक ठीक समझना, उसको समझने के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, क्या क्या मेथोडोलॉजी करने की जरूरत है, वो उस पर वेद काम, मीमांसा काम करता है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, और वेदांत को उत्तर मीमांसा, जो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे, इसको पूर्व मीमांसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वेद जो ऋग यजु साम अथर्व वेदों के बाद जो ग्रंथ आए, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, जो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो तो ब्राह्मण ग्रंथों में बेसिकली कर्मकांड, यज्ञ क्या है, कैसा है, उसकी इंटरप्रिटेशन है। पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन उन ब्राह्मण ग्रंथों को बेस करके बनाया गया है। यज्ञ क्या है, यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों का अर्थ कैसे निकालना चाहिए, एक तो क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ से के बेस पर मीमांसा दर्शन डेवलप हुआ और इसीलिए उसको पूर्व मीमांसा कहा गया। वेदांत उपनिषद जो लास्ट लिटरेचर उस पर बेस्ड पर हुआ इसके लिए उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। तो मीमांसा का टॉपिक क्या है? न्याय दर्शन, जैसे एक न्याय दर्शन आपने पढ़ा वो एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा फोकस करता है, मीमांसा दर्शन का फोकस होता है इंटरप्रिटेशन पर, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, किसी भी चीज को कैसे इंटरप्रेट किया जाए उसकी मेथोडोलॉजी को बताने का काम मीमांसा दर्शन करता है। आगे जाकर के जो फिलोलॉजी है, फिलोलॉजी मतलब भाषा का जो 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 भाषा को समझने के लिए जो जो टेक्निक्स हमें समझने की जरूरत है वो फिलोलॉजी और लिंग्विस्टिक भी, भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र, वो मीमांसा दर्शन उसका मूल ग्रंथ है। क्योंकि मीमांसा दर्शन एक सेंटेंस को या वाक्य को ठीक ठीक कैसे समझा जाए उस पर ज्यादा फोकस करता है। आपने कहा राम कल सुबह घर गया था, अब इसको कितने तरह से लोग इंटरप्रेट करेंगे सिंपल एक वाक्य को, और वो इंटरप्रिटेशन की क्या सही इंटरप्रिटेशन है उसको जानने के लिए एक मेथोडोलॉजी है जिससे वेद में मिस इंटरप्रिटेशन कम हो, और जिसका परिणाम है कि मीमांसा दर्शन इतना ज्यादा पावरफुल ग्रंथ है किसी भी लैंग्वेज को ठीक ठीक समझने के लिए। आगे जाकर इंडिया में जो लीगल लिटरेचर डेवलप हुए उसमें इस मीमांसा दर्शन का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, और जो फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज या जो इंडियन डिबेट सिस्टम है उसमें भी मीमांसा दर्शन का काफी कंट्रीब्यूशन है। चलते चलते मैं आपको एक चीज बताऊं, इवन आज भी जो इंडियन लीगल सिस्टम है जो जज या वकील लोग जो जो काम करते हैं, बहुत सारे लॉ स्कूल्स में, बड़े बड़े लॉ स्कूल्स में मीमांसा दर्शन का एक 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 कंडेंस्ड चैप्टर पढ़ाया जाता है ये समझाने के लिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन होता है, किसी रूल या रेगुलेशन की लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान देना होता है, उसके लिए मीमांसा दर्शन आज भी बहुत सारे लीगल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है, ये इसका रोल है। लास्ट नॉट द लीस्ट, जो पता है आपने बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, तो वो है वेदांत दर्शन, उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। वेदांत दर्शन जिसका दूसरा नाम उत्तर मीमांसा है, इसका मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उसके प्रथम आचार्य फाउंडर आचार्य हैं वादरायण, व्यास भी उनको कहा जाता है। वेदांत दर्शन उपनिषद पर बेस्ड है, जैसे मीमांसा दर्शन ब्राह्मण ग्रंथ बेस्ड है, वेदांत दर्शन उपनिषद पर बेस्ड है। उपनिषद का विषय क्या है, हमने उपनिषद की चर्चा में डिस्कशन की थी, जो स्पिरिचुअल आइडियाज है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, परमात्मा को जानने की क्या तरीका है, सुख दुखों से छुटकारा पाने की क्या तरीका है, ये उपनिषद का विषय है। इसको जो एक एनालिटिकल वे में, फिलोसॉफिकल वे में जो एलैबोरेट किया जो दर्शन, वो वेदांत दर्शन है। तो वेदांत दर्शन का मूल ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, इसमें 555 करीब सूत्र हैं, चार चार चैप्टर हैं, और इसका टॉपिक क्या है, जो अल्टीमेट रियलिटी, वो जो परमात्मा है उसको ब्रह्म कहा गया, या आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, और इसको प्रूफ करने के लिए क्या एविडेंसेस है, जो लोग इसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानते उनका काउंटर आर्गुमेंट क्या है, इन सब चीजों पर ब्रह्म सूत्र या वेदांत दर्शन डिस्कस करता है। दूसरा पॉइंट जो वेदांत दर्शन का है कि उस जो ज्ञान है, ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, संसार है, जो स्पिरिट, उस ज्ञान को पाने की क्या तरीका है, द प्रोसेस बाय व्हिच वो जो अल्टीमेट इमेंसिपेशन मुक्ति पाने की क्या तरीका है, वो भी वेदांत दर्शन अपने ढंग से रिकमेंड करता है। और जो तीसरा जो वेदांत दर्शन का विषय है, ये जो सेल्फ नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान है, इसकी क्या जरूरत है, उसकी नीड क्या है, उसकी फायदा क्या है, जानने से फायदा क्या है, उसका क्या रिजल्ट होता है, अगर जान लिया तो इसका क्या हमें कंसिक्वेंसेस होगा, इन सब चीजों का वेदांत दर्शन डिस्कशन करता है। आगे जाकर मॉडर्न इंडिया में वेदांत दर्शन बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, क्योंकि बहुत सारे आचार्य अपने अपने सेक्ट को या अपने अपने पर्टिकुलर सेक्टेरियन व्यू को प्रमोट करने के लिए किसी वेदांत दर्शन का इंटरप्रेट किया, न कि वेदांत दर्शन को समझने के लिए, अपितु अपने सेक्टेरियन व्यू को, अपना एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को प्रमोट करने के लिए, उसको एक ऑथेंटिसिटी देने के लिए उन्होंने वेदांत दर्शन का इंटरप्रेट किया, जो आगे जाकर के ये वेदांत बहुत तरह के वेदांतों में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग स्कूल में अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, वेदा वेदा द्वैत वेदांत, अचिंत्य वेदा वेदा वेद, बहुत सारे के वेदांतों में वो आगे जा करके, जिसके कारण बहुत कंफ्यूजन भी हुआ। तो ये आज हमने थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा लिया, और मुझे पता है ये टॉपिक काफी बोरिंग है, पर अगर अभी आप बोरिंग लगा, बाद में आप आराम से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्चर्स को जानना। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।